नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या भोजन का धर्म होता है कोई? आप जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जो फूड हैबिट्स है आपका, फूड संस्कृति है, क्या उसका कोई मजहब से लेना देना है? या आप जो चीज़ खाना खाते हैं उससे आपका मजहब या फेथ, आपका धर्म तय होता है क्या? क्योंकि अभी एक बड़ी डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे सुधा मूर्ति के फूड हैबिट्स को लेकर। सुधा मूर्ति जी ने कहीं अपने किसी बातचीत में कहा था कि मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ। आपको यहाँ बताता चलूँ कि पूरे विश्व में अभी शाकाहारी से भी आगे की एक प्रोसेस है, जिसमें लोग दूध भी नहीं खा रहे हैं, ऐसी इस तरह का एक आंदोलन भी चल रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग मांसाहार से शाकाहार की तरफ और शाकाहार से दूसरे आहार की तरफ जा रहे हैं, जिसमें दूध, दही और पनीर को भी वो त्याग कर रहे हैं। ऐसे समय में सुधा मूर्ति, जो नारायण कृष्ण मूर्ति की पत्नी हैं और इंफोसिस में, ऑब्वियसली नारायण मूर्ति जो इंफोसिस के डायरेक्टर हैं या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उन्होंने उनके इस कथन का नक्सल और जिहादी पत्रकारों ने किस तरह से उसको एक जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, इससे ये पता चलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये स्पष्ट है, भोजन ही आहार है। यदि शरीर को, मन को स्वस्थ रखना है तो उसकी पहला आहार, उसका जो पहली सीढ़ी है वो है भोजन। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में, आयुर्वेद में और भारतीय जीवन शैली में, जिसमें खास करके फूड की जो व्यवस्था है, भोजन की जो व्यवस्था है, उसमें बड़ी तार्किकता है और मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत सारे चीज़ों को तय किया गया है कि कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिससे आपका शरीर और स्वस्थ समृद्ध रहे, सौंदर्य से भरा हुआ रहे, आनंदपूर्वक रहे और रोग ग्रस्त से बचे रहें, आप रोगी होने से बचे रहें आप। लेकिन आरफा खानम जैसे लोग या कुछ और भी नक्सल प्रवृत्ति के जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, उनको सुधा मूर्ति जी के भोजन व्यवस्था में या उनके भोजन के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी एक और एक चीज़ में है, जो उनके पिताजी कार्ल मार्क्स कह गए हैं कि किसी भी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके बाद उसके ऊपर कुछ बनाने का कार्य किया जाएगा। हालांकि पिछले 100-150 सालों में विश्व ने देखा है कि वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का, नक्सलियों का जो ज्ञान है उसको केवल विनाश का ज्ञान है, विनाशक ज्ञान उनके पास है, उसके पास निर्माण करने का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने चीन का विनाश किया, उन्होंने रूस का विनाश किया, उन्होंने अन्य कई देशों का, पूर्वी यूरोप का विनाश किया, उस पर कुछ निर्माण नहीं कर पाए। जब निर्माण करने की बारी आई तो उन स्थानों को, देशों को, जगहों को वामपंथ का त्याग करना पड़ा, फिर वहाँ कुछ निर्माण संभव हो पाया। रूस का पुनर्निर्माण वामपंथियों के, कम्युनिस्टों के पतन के बाद ही शुरू हुआ। चीन का पुनर्निर्माण वामपंथियों, कम्युनिस्टों के पतन के बाद ही शुरू हुआ। उसी तरह देश के अनेक छोटे, ईस्टर्न यूरोप के अनेक छोटे राज्य हैं, जर्मनी है, जहां वामपंथियों के पतन के बाद वहां पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसको कम्युनिस्टों ने, नक्सलियों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो ये जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कई सौ साल से चल रहा है, ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें इन वामपंथियों का, इन नक्सलियों का, जिहादियों का कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई क्या खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है और कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, उसकी एक ही दिलचस्पी है, एक ही उसका सूत्र है, भारतीय संस्कृति का विनाश करना, भारत में जो उपलब्ध संस्कृति है उसको नष्ट कर देना और उसके ऊपर अब्राहमिक संस्कृति का प्रतिरोपण करना, कम्युनिस्ट का प्रतिरोपण करना या इस्लामिक संस्कृति का प्रतिरोपण करना, ये उसका स्पष्ट लक्ष्य है। और इसीलिए बार बार भारतीय संस्कृति पे अनेक तरह से हमले किए जाते हैं। कभी ये हमला हिंदुत्व के नाम पे किया जाता है, कभी ये हमला डिसमेंटल हिंदुत्व के नाम पे किया जाता है, कभी ये हमला पैट्रियार्क चीज़ों के रूप में किया जाता है, कभी ये हमला ब्राह्मण के रूप में किया जाता है। अनेक कारणों से, अनेक रास्ते अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, जो मार्क्स ने कहा था 1858 के अपने एक लेख में स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत, भारतीय समाज हमारे समाजवाद के बिल्कुल करीब है, उसकी सामाजिक व्यवस्था बेहद उन्नत है विश्व में, और उसकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जो एक गांव में यदि कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है तो वो वहीं खपत भी हो जाता है, और यदि वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो बाहर पड़ोस के गांव में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कार्ल मार्क्स ने 1858 में या के आसपास न्यूयॉर्क में एक अखबार में एक लेख छपा था जो पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध है, कोई भी जाके उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकता है। इतनी समृद्ध उन्नत और कृषि की इतनी उन्नत व्यवस्था की बातचीत करने के बाद मार्क्स कहता है कि लेकिन यहाँ चूंकि गाय और बंदर की पूजा होती है इसलिए इस संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए। अब इसमें विरोधाभास आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो जो समाज इतनी उन्नति पे है, इसका अर्थ यह है कि गाय और बंदर की पूजा भी उस उन्नति में सहयोगी है। सहयोगी यदि ना भी माने बाहर के लोग अज्ञानतावश, तो कम से कम वो विरोधी नहीं है। जब वो विरोधी नहीं है तो उसे नष्ट क्यों करना है, उसके विनाश की कामना क्यों है, उसे उसके सर्वनाश की कामना क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर न तो वामपंथियों के पास है न जिहादियों के पास है। इस प्रश्न का उत्तर एक है, संपूर्ण सत्ता पाने की लालसा। कम्युनिस्टों की भी एक ही लालसा होती है, उसका एक ही उद्देश्य किसी भी समाज पर संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लेना, और जिहादियों का भी एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण पृथ्वी पे शरिया के जरिए, शरिया के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पे सत्ता हासिल करना और स्थापित करना। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। सत्ता स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे उसे पता नहीं है। रूस में सत्ता स्थापित करने के बाद स्टालिन ने क्या किया दुनिया को पता है, मार्क्सवादियों को पता नहीं है। चीन में माओ से तुंग ने सत्ता स्थापित करने के बाद क्या किया दुनिया को पता है, मार्क्सवादियों को पता नहीं है। चीनियों को पता है कि उन्होंने किस त्रासदी से उस युग को पार किया, और रूस को भी पता है कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने संकटपूर्ण जीवन को झेला, और गोर्बाचोव के बाद वहाँ खुली हवा आई और लोग सांस ले रहे हैं, और अब रूस प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। तो सुधा मूर्ति के बहाने वामपंथियों और जिहादियों का वही लक्ष्य है जो कार्ल मार्क्स का लक्ष्य था सदियों पहले, कि किसी भी समाज और सभ्यता का विनाश, संपूर्ण विनाश। इस संपूर्ण विनाश के रास्ते सत्ता समाज पे, उस समुदाय पे सत्ता स्थापित करना। चाहे इसके किसी भी अंग को आप ले लें, फ्रैंकफर्ट स्कूल को ले लें, ग्रैमस्की की थ्योरी को ले लें, या इनसे उपजे हुए तमाम तरह के कुकुरमुत्ते की तरह सो कॉल्ड, मैंने अपने आप को कथित रूप से इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग, पत्रकार और सोशल साइंटिस्ट, जितने भी लोग हैं, आप उसके कृत्यों को देख लें, उस सारे कृत्य एक ही जगह पहुंचते हैं कार्ल मार्क्स के उस कथन पे, जो कहता है किसी भी समाज में उपलब्ध संस्कृति और सभ्यता को पहले नष्ट कर दो, जला के राख कर दो, उसके बाद आपको उस पे सत्ता स्थापित करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक शून्य स्थिति हो जाएगी, तो आप कैसे भी वहाँ के लोगों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ठीक यही बात इस्लाम भी करता है, जहाँ भी जाओ वहाँ इस्लाम स्थापित करो, अर्थात वहाँ जो उपलब्ध सभ्यता और संस्कृति है उसका विनाश पहले करो, उसको फ्लैट कर दो, और फिर अपनी सभ्यता, अपने जो विचार हैं वहाँ आरोपित करो। इन दोनों में इतनी समानता है कि आज विश्व में दोनों मिलकर किसी भी पल्लवित और प्रफुल्लित सभ्यता को विनाश करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, और इसमें अनेक अनेक लोग जो अज्ञानतावश इसमें लगे हुए हैं, अपने बौद्धिक अहंकार के वश इसमें लगे हुए हैं, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और आम लोग यदि इसका एकजुट होके दुनिया के तमाम काफिर और लोग इसका विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें अवश्य परिवर्तन आएगा और ऐसे लोगों की का हौसला टूटेगा, हम इसको परास्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सुधा मूर्ति प्रकरण में स्पष्ट है, ये वामपंथियों का भारतीय संस्कृति पे हमला है, जो कि सदियों से होता आ रहा है, कार्ल मार्क्स से लेके आज तक होता आ रहा है, और यही हमला है वो, इसमें और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।